हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आयुष्मान और प्रीति का खाना घर से आया था। प्रीति का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए उसके लिए सादी सी खिचड़ी आई थी। हॉस्पिटल बेड पर बैठी प्रीति पिछले 10 मिनट से खिचड़ी को देखकर अटपटा मुंह बना रही थी। आयुष्मान अपने बेटे को अपनी गोद में लिए वार्ड में टहल रहा था, पर उसकी नज़रें बराबर प्रीति पर बनी हुई थीं। पहले तो वो बस खामोशी से उसकी नौटंकी देखता रहा, फिर बच्चे को पालने में सुलाकर उसके पास चला आया। प्रीति, ये खाने के लिए है, तुम क्या इतनी देर से इसे देखकर मुंह बना रही हो? आयुष्मान की बात सुनकर प्रीति ने नज़रें उठाकर उसे देखा और बुरा सा मुंह बनाकर बोली, मैं नहीं खाऊंगी ये देखने में ही कितना बेकार और फीका सा लग रहा है। मैं कोई बीमार हूँ जो आप मुझे ऐसा फीका बेस्वाद बीमारों जैसा खाना खिलाकर टॉर्चर कर रहे हैं? बीमार तो नहीं हो तुम, पर ऑपरेशन हुआ है तुम्हारा और कुछ वक्त तक तुम्हें ज्यादा नमक मिर्च मसाला वाला खाना नहीं खाना है, इसलिए अभी तुम्हें यही खाना होगा। आयुष्मान ने प्यार से प्रीति को समझाने की कोशिश की, पर प्रीति जिद्दी बच्ची की तरह अपनी जिद पर अड़ी रही और मुंह फुलाते हुए नाराजगी से बोली, आयुष्मान जी, मैं बता रही हूँ, ये सरासर नाइंसाफी है, ये कोई बात नहीं होती है। बच्चा हम दोनों का, अगर वो मुझे माँ कहेगा तो आपको भी पापा कहेगा, पर सारी परेशानी मैं ही झेल रही हूँ। जन्म से पहले भी इतनी दिक्कतें सही मैंने, जन्म के वक्त इतना दर्द बर्दाश्त किया, ऑपरेशन भी हो गया मेरा, जबकि मुझे सुई से भी इतना डर लगता है, और अब भी आपको तो अच्छा खाना खाने को मिल रहा है और मुझे ये उबली हुई खिचड़ी भी जा रही है खाने के लिए, मेरे साथ ज्यादती हो रही है। प्रीति नाराजगी से मुंह फुलाए उसे देखने लगी। आयुष्मान ने उसकी बात खामोशी से सुनी और फिर प्यार से उसके गाल को छूकर बोला, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत आसानी से पिता बन गया, तुम्हारी सारी बात सच है, माँ बनने के लिए तुमने बहुत कुछ सहा, जबकि मुझे किसी दर्द या परेशानी से होकर नहीं गुजरना पड़ा, और अब भी तुम्हें ही ज्यादा परेशानी होगी। मैं चाहूँ भी तो इसमें कुछ नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे और हमारे बेटे के ख्याल रखने के। अब तक बहुत दर्द और तकलीफ सही है तुमने, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें आगे ज्यादा परेशानी हो, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि अभी तुम्हें ज्यादा नमक मिर्च वाला खाना नहीं खाना है। अगर अभी डॉक्टर की बात नहीं मानी तो सारी जिंदगी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तुम्हें, इसलिए कुछ वक्त तक थोड़ा परहेज कर लो, और अगर तुम्हें शिकायत है कि तुम ये बेस्वाद उबला हुआ खाना खाओगी और मैं स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लूंगा, तो मैं तुम्हारी इस शिकायत को दूर कर देता हूँ। आयुष्मान की ये बात सुनकर प्रीति सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। आयुष्मान एक पल को ठहरा, फिर उसने आगे कहना जारी रखा, जब तक तुम ये बेस्वाद खाना खाओगी मैं भी यही खाऊंगा, अब तो तुम खुश हो, चलो अब नखरे छोड़ो और जल्दी से इसे खत्म करो, फिर तुम्हें दवाई भी लेनी है और आराम भी करना है। आयुष्मान के बोलते बोलते ही खिचड़ी का स्पून उसके तरफ बढ़ा दिया। प्रीति तो शौक से उसे देखती ही रह गई। आयुष्मान ने आंखों से ही मुंह खोलने का इशारा किया तो प्रीति ने आंखें बड़ी बड़ी करके उसे हैरानगी से देखते हुए कहा, आप भी ये बेस्वाद खाना खाएंगे मेरे लिए? प्रीति का सवाल सुनकर आयुष्मान ने चम्मच उसके मुंह में डाल दिया और उसे खिचड़ी खिलाते हुए मुस्कुरा कर बोला, हाँ, पति पत्नी हैं हम, और शादी के 7 वचनों में एक वचन ये भी दिया था मैंने कि हर सुख दुख में साथ दूंगा तुम्हारा। अब तुम्हें होने वाला दर्द और तकलीफ तो नहीं बांट सकता मैं, पर तुम्हारा साथ तो दे सकता हूँ। एक बार फिर आयुष्मान की बातों का जादू प्रीति पर ऐसे चला कि वो बस उसे देखती ही रह गई। आयुष्मान का प्यार दुनिया में सबसे अलग और अनोखा था, और आज प्रीति को शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है जो उसे आयुष्मान जैसा जीवन साथी मिला। आयुष्मान प्रीति को देख रहा था और प्रीति आयुष्मान को, कि इतने में उनके राजकुमार ने रोना शुरू कर दिया। आयुष्मान ने चम्मच टिफिन में रखा और तुरंत जाकर अपने बेटे को पालने से उठाकर बहलाने लगा, पर वो नन्हा राजकुमार आंखें बंद किए किलकारियां मार रहा था। कुछ देर तो प्रीति खामोश सी देखती रही कि कितनी कोशिश कर रहा था आयुष्मान उसे चुप करवाने की, और उसके रोने से कितना बेचैन और परेशान हो गया था, फिर मुस्कुरा कर बोली, ऐसे चुप नहीं होगा वो, भूख लगी है उसे। प्रीति के ये कहते ही आयुष्मान ने बच्चे को उसकी गोद में रख दिया, पिला दो दूध, देखो कितना रो रहा है। आयुष्मान की परेशान निगाहें अब भी बच्चे पर टिकी थीं। प्रीति आयुष्मान को ही परेशान निगाहों से देख रही थी। जब कुछ मिनट बाद भी प्रीति ने बच्चे को दूध नहीं पिलाया तो आयुष्मान ने व्याकुलता से सवाल किया, क्या हुआ, तुम उसे दूध क्यों नहीं पिला रही, आपके सामने कैसे? प्रीति ने संकुचाते हुए इतना ही कहा था कि आयुष्मान को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बेचारगी से अपनी आंखों को भींचते हुए पहले खुद को अपनी इस बेवकूफ़ी के लिए कोसा, फिर मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, सॉरी, चिंता में मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम बेबी को दूध पिला लो, मैं बाहर ही हूँ, हो जाए तो आवाज़ लगा देना। आयुष्मान ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, प्रीति एकाएक बोल पड़ी, बाहर जाने की जरूरत नहीं, बस मेरी और पेट किए यूं ही खड़े रहिए, बस कुछ देर लगेगी। आयुष्मान के आगे बढ़ते कदम ठिठक गए, ना तो वो कुछ कह सका और ना ही आगे बढ़ सका, खुद में ही उलझा हुआ सा वहीं खड़ा रहा। बहुत अजीब लग रहा था उसे ये सब। बच्चे का रोना शांत हुआ तब कहीं जाकर आयुष्मान को कुछ राहत मिली। कुछ देर बाद प्रीति की आवाज़ आयुष्मान के कानों में पड़ी और वो अपनी उलझन से बाहर आया, मैंने आपके बेटे का पेट भरा, अब आप आकर मुझे खाना खिलाइए, जोरों की भूख लगी है मुझे। आयुष्मान ने प्रीति की बात सुनकर पलट कर देखा तो प्रीति बेबी को साइड में सुला चुकी थी और लबों पर मुस्कान सजाए उसे ही देख रही थी। आयुष्मान ने सर हिला दिया और उसके पास चला आया। उसने जैसे ही स्पून प्रीति की तरफ बढ़ाया, प्रीति ने अपना चेहरा फेरते हुए कहा, खुद भी तो खाइए, सारा मुझे खिला देंगे तो खुद क्या खाएंगे? और है प्रीति, इसलिए पहले तुम खा लो, तुम्हें नवाई भी लेनी है, फिर मैं खा लूँगा। आयुष्मान ने प्रीति को समझाने की कोशिश की पर प्रीति ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, जब एक सा खाना खाना है तो साथ ही खाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी आयुष्मान को प्रीति के सामने झुकना पड़ा। प्रीति को खिलाते हुए उसने खुद भी डिनर किया, फिर प्रीति को दवाई खिलाकर लिटा दिया और खुद वहां रखे सोफे पर आकर बैठ गया। प्रीति तो जल्दी ही नींद के आगोश में समा गई, पर आयुष्मान काफी रात तक जागता रहा।